टुडे ला प्रिस्ट लेक्चर एजी गजेंद्र आनंद प्रभु
त्रिवेंद्रम रख दिया इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के जहां पे राजा कुलशेखर आलवार का जन्म हुआ था वो जगह का नाम था तिरुवंच कोल्लम। ये छेड़ा वंश के थे। छेड़ा वंश में एक परंपरा थी कि जो भी राजा हुआ करते थे वो राज ऋषि हुआ करते थे। जितने भी राजा थे सभी राज ऋषि हुआ करते थे। राजा कुलशेखर का पिता का, उनके पिता का नाम था राजा दृढ़वर्त। राजा दृढ़वर्त ये बहुत ही अनंत पदनाम के अनन्य शिष्य थे। ये राजा थे लेकिन ये अपने को राजा नहीं मानते थे। ये परंपरा चली आ रही थी कि जो भी राजऋषि रहता था भले ही वो राजा रहते थे लेकिन वो अपने को राजा नहीं मानते थे, अपने को भगवान विष्णु का, भगवान अनंत पद्मनाम का मंत्री माना करते थे और दिन में 3 बार जाके भगवान के यहाँ दंडवत करते थे। पूरा राज्य का लेखा जोखा जो भी रहता था, क्या फाइनेंशियल्स है, कितने आमदनी हुई, कितनी यहाँ से खर्चे हुए और क्या प्रोजेक्ट है, पूरा उनको लेखा जोखा दिया जाता था। ये परंपरा हमारे इस्कॉन मंदिर में भी है। बहुत सारे मंदिरों में, अधिकांशतर मंदिरों में रूपा जी खुद क्या करते थे कि उनकी क्या परियोजना है, क्योंकि ठाकुर जी को, भगवान को, विष्णु को ही भगवान मानते थे, मालिक मानते थे। विशेष तरह हमारे को अपने घर में भी कहना चाहिए कि जो भी मालिक है वो भगवान है, तो हमारे को क्या लेखा जोखा है, हम क्या करना चाह रहे हैं सुबह में उसका लेखा जोखा करना चाहिए, शाम में क्या हुआ उसका भी एक अनुमोदन करना चाहिए। इससे आत्मा साक्षात्कार की बहुत ही वृद्धि होती है। तो ये राजा अपने को राजा नहीं मानते थे बल्कि अपने को अंत परिणाम के मंत्री मानते थे और उस तहत उस तरह से कार्य करते थे। राजा दृढ़वर्त का बहुत वर्षों, विवाह होने के बहुत वर्ष तक भी उनके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए बहुत चिंतित रहते थे और अनंत पद्मनाम के सामने हमेशा प्रार्थना करते रहते थे और अनंत पद्मनाम के आशीर्वाद से उनको राजा कुलशेखर के रूप में, जो कि एक महान महान ऋषि, वैसे छेरा वंश में तो सभी राज ऋषि थे लेकिन उसमें भी ये एक महान राजऋषि थे, चूड़ामणि थे, शिरोमणि थे, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बचपन में बहुत ही लाड़ प्यार में इनका लालन पोषण हुआ। राजा दृढ़वर्त ने इनको सभी शिक्षाएं दी, क्षत्रिय थे, सभी शिक्षाएं, यहां तक कि आध्यात्मिक शिक्षा भी इनको बहुत ही गूढ़, बहुत ही सिद्धांत के रूप में दी गई। जैसे जैसे ये तरुण अवस्था में आए तो पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि राजा जैसे देखते थे कि उन्हें उनके उत्तराधिकारी एक तरुण अवस्था में आ रहे हैं और राजपाट संभालने के लायक हो गए हैं, तो वो स्वतः अपने कुर्सी से हटकर जंगल की ओर भगवान के धाम, भगवान की सेवा में कहीं अंतर ध्यान होने के लिए उसमें निकल जाया करते थे। अभी के जैसा नहीं है कि जो एक बार कुर्सी मिल गई तो या तो आप को हटाया जाए, इलेक्शन में हार जाए, या किसी आपका किसी ना किसी तरह से मृत्यु हो जाए, या आपको किसी कोर्ट केस के द्वारा हटा दिया जाए तभी आप हटेंगे, नहीं तो आप कुर्सी पे जमे रहेंगे। पहले के राजा ऐसा नहीं हुआ करते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि राजा कुलशेखर एक तरुण अवस्था में आ गए हैं और राजपाट को संभाल सकते हैं, तो वो स्वतः उनकी इच्छा हुई कि मैं अब इस राजपाट को छोड़ के मैं यहां से निकल जाऊं। अधिकांशतः देखा जाता कि 50 साल की आयु में वो अपने राजपाट को छोड़ देते थे, इसीलिए कहा जाता था पंचारम सोवरम ब्रह्म ब्रजेत। वो जिस तरह से 50 साल होता था वो वन की तरफ रवाना हो जाते थे। राजा कुलशेखर ने राजपाट संभाला, बहुत ही तेजस्वी राजा थे, इनका चरित्र बहुत ही सौम्य था, बहुत ही मृदुभाषी थे, बहुत ही प्रकर्मी थे। इन्होंने उनके छेरा वंश के रहते हुए इनके आसपास के जो पांड्या राज थे, चोला राज थे, उस पर भी आधिपत्य किया और अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। इनके राज्य में कोई भी अपने को बलवान नहीं मानता था, कोई भी अपने को बहुत ही मजबूत और बहुत ही बलवान और बहुत ही शक्तिशाली नहीं मानता था, क्योंकि उसको उस राज्य में अपनी शक्ति और बलवानता का उदाहरण देने का उसका कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि सभी समान एक जैसे थे। राम राज्य का वहां पे एक विशेष परंपरा था और कोई साथ में कोई भी अपने को ऐसा कमजोर भी नहीं मानता था, क्योंकि उसको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि मैं कमजोर हूं हमको कोई दबा सकता है, क्योंकि सभी सम थे, पूरा राम राज्य था। इस तरह का था कि समय पे वहां पे बारिश हुआ करती थी हमेशा, सालों भर खेत ललहाते रहते थे, कोई भूखमरी नहीं थी, कोई अकाल नहीं था, सभी सुख थे, पूरा सभी आनंद हर्षित रहा करते थे, राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। कभी कभी राजा क्या करते थे, भेष बदल के अपने प्रजा के बीच में चले जाते थे ये समझने के लिए कि क्या प्रजा को कोई तकलीफ है क्या, यदि कोई तकलीफ उनको मालूम पड़ता था तो उस तकलीफ को दूर करते थे। इस तरह से समय चलते रहा, उन्होंने इसी बीच उन्होंने जब अपना राज्य का आधिपत्य बढ़ाते गए तो पांड्या राज्य की जो कन्या थी उनसे इनका विवाह हुआ। ये राज्य पार्टी में पूरी तरह लीन हो गए। ये देखा जाता है जितने भी आलवार्स है ना, 12 आलवार्स हैं, ये भगवान के सामग्री है, जो भगवान का कौस्तुभ मुनि है, भगवान का कौस्तुभ है, चक्र है, गदा है, इनके अवतार माने जाते हैं। तो उस तरह से ये भगवान के कौस्तुभ मुनि जो था उनके अवतार थे। तो ये राजपाट में पूरी तरह से लीन हो जाने के बाद एक दिन इनके चरित्र में, इनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। किसी के भी जीवन में, किसी के भी व्यक्ति में एक जीवन में एक मोड़ आता है जो आपके पूरे जीवन की दिशा को इधर से उधर बदल देता है। यदि जीवन में कोई भौतिक मोर आता है, भौतिक मोर जैसे रात में मैं धनवान हूं लेकिन रात में कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे दूसरे दिन हम बहुत ही दरिद्रता की ओर चले गए हैं, तो वो भी जीवन का एक मोर रहता है। या हम बहुत दरिद्र हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन रात में कुछ लॉटरी लग गई जिससे दूसरे दिन से हम बहुत धनवान हो गए, तो ये भी एक जीवन का मोर है। लेकिन ये जो जीवन का मोर है, ये जीवन में कोई इसका लाभ नहीं रहता है, क्योंकि ये जो मोर आती है ये आपके जीवन को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से बाहर नहीं कर सकता है। लेकिन जीवन में यदि आध्यात्मिक मोर आता है जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस बंधन से दूर कर सकता है, बाहर कर सकता है, तो जीवन का वो मोर जो है वो असली मोर कहा जाता है कि हाँ जीवन में वो बदलाव जो आया था, उस क्षण जो बदलाव आया था जिसके तहत ये हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से निकल सकते हैं, तो वो सबसे सही मोर रहता है। जैसे अध्यात्म में बहुत सारे उदाहरण है, मृगारी का उद्घाटन है, जैसे ही नारद मुनि के संसर्ग में आया कितना महान भक्त बन गया, रत्नाकर डाकू था बाद में वाल्मीकि ऋषि बन गया, नलकुबर, ये सब किस तरह से इनके ये सब जीवन में आध्यात्मिक मोर है, जिनके ये मोर आने से उसका जीवन का रास्ता ही बदल गया जिससे वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पूरे बंधन से निकल सकता है। उसी तरह से राजा कुलशेखर के जीवन में भी एक इसी तरह का मोर आया। वो मोर ऐसा था कि रात को ये सोए हुए थे और सोने की अवस्था में ही विश्राम करने की अवस्था में ही इनको कृष्ण का एक बहुत ही तेजस्वी, साफ और स्पष्ट दर्शन हुआ। उस तेजस्वी स्पष्ट कृष्ण के दर्शन से ये इतने आत्म विभोर हो गए कि ये और निंद्रा में चले गए। उस समय में ये परंपरा चलती थी राजघराने में कि कोई राजा सोया रहता था, उनको सुबह ब्रह्ममूत्र में उठाने के पहले बहुत तरह के वाद्य संगीतों की का आयोजन किया जाता था, संगीतकार आके बहुत सारे संगीत बजाते थे जिससे राजा का नींद खुले। उसी तरह से यहाँ पे भी जब सुबह में ब्रह्ममूर्त में बहुत सारे संगीतकार वाद्य ये सब आके अपने संगीत को बजाने लगे, लेकिन राजा इतने अंतर्धाम होके और नींद में चले गए थे कि उन्होंने राजा को इन संगीतों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। बाहर जो संगीतकार ये सब वाद्य बजा रहे थे उनको बहुत चिंता हुई कि आखिरकार हुआ क्या कि आज राजा उठ नहीं रहे हैं। अन्य दिनों में ऐसा देखा जाता था कि जिस तरह से ये संगीतकार बजाना शुरू करते थे तो राजा अंदर से कुछ एक इंडिकेशन दे देते थे, एक कुछ ऐसा बोल देते ठीक है हम उठ गए हैं अब आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बजा रहे थे लेकिन राजा कोई अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो बाहर में जो संगीतकार थे उनको कुछ चिंता हुई राजा को क्या हो गया है, हालांकि उनको उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए था लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कक्ष में प्रवेश किए और राजा को उठाया। राजा उठे और फिर से अपने होशोहवास में आए और फिर उन्होंने रात में जो उनने घटना घटी थी वो घटना का उन्होंने उनके सामने में वर्णन किया। संक्षेप में बताऊं तो चेतना के तीन स्तर होते हैं, एक स्वप्न होता है, एक जागृति है, एक सुसुप्ति है। ये जो तीनों स्तर हैं, स्वप्न जागृति और जागृति और सुषुप्ति, ये शरीर के स्तर पे हैं। चेतना का एक चौथा स्तर भी होता है जिसको समाधि कहा जाता है, ये आत्मा के स्तर पे रहता है। यदि आत्मा के स्तर पे यदि आपको भगवान का साक्षात्कार होता है तो ये शरीर के जो तीन स्तर हैं किसी भी स्तर पे हो सकते हैं। तो राजा को इस भगवान का जो दर्शन हुआ था ये सुषुप्ति की अवस्था में हुआ था, थोड़ा सोए हुए थे, थोड़ा जगे हुए थे, उस अवस्था में हुआ था, स्वप्न की अवस्था में नहीं हुआ था। स्वप्न की अवस्था में कुछ होता है तो वो सही नहीं माना जाता है। इस क्षण के बाद, इस घटना के बाद राजा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि वो बिल्कुल ही जो पहले विपरीत दिशा में चला गया। उनको भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति इतनी प्रगाढ़ प्रेम लालसा होने लगी कि वो सब कुछ, उनको राज पाट इससे घृणा होने लगी। किसी तरह से उस चाहे कि मैं इससे छोड़ के कहीं वन में चला जाऊं, कहीं भगवान की सेवा में चला जाऊं, कहीं इधर चला जाऊं, लेकिन यहां पे रहने की उनकी इच्छा बिल्कुल ही खत्म होती चली गई। धीरे धीरे उनकी भक्ति में इतनी तीव्रता आती गई, बहुत सारे काम उन्होंने अपने मंत्रियों को डेलीगेट कर दिया, उनको देते गए कि ठीक है आप ये संभालो, हमको ये सब में अभी रुचि नहीं रह गई। जब वो दूसरे को देखते थे उनके मन में भगवत दर्शन की, भगवत प्राप्ति की लालसा रहती थी हमेशा। जब दूसरे को देखते थे कि अरे ये तो इस तरह से इसकी चेतना नहीं है, इस तरह से तो समझते थे ये सब पागल है। पागल किस रूप में है, मोह से पागल हैं, क्रोध से पागल हैं, अपने जीवन से पागल हैं। इनकी इनका पूरा जीवन, जो पूरा व्यक्तित्व है, पूरा जीवन इनका अपने इंद्र तृप्तियों की ऊप के तरफ ही चला जाता है, बाकी भगवत दर्शन के ऊपर कभी जाता ही नहीं है। ये सब चेतना को देखते थे, ये सब चीज को सुनते थे तो अंदर से बहुत ही वो शोकाकुल हुआ करते थे। हमेशा इसी मनन में वो रहा करते थे, उनको हमेशा ऐसी लालसा हुआ करती थी कि मैं भगवान के सेवा में कभी चला जाऊं, श्री रंगनाथ जी की सेवा में कभी चला जाऊं, वहां जाके मैं वहां पे भक्तों की किस तरह से सेवा करूं। कहने का मतलब यह है कि उनके मन में एक तरह का लालच, एक तरह का लोभ, भक्ति के प्रति जो लालसा रहती है, लालसा युक्त प्रार्थना, भगवान से हमेशा वही प्रार्थना करते रहते थे कि हे भगवान आप हमको यहाँ से, इस लंका से, यहाँ से। लंका इसलिए कहते थे क्योंकि वो विभीषण, लंका में जो विभीषण था उनके जीवन चरित्र से वो बहुत ही प्रभावित थे। विभीषण का भी रामायण में आप जीवन चरित्र देखेंगे तो विभीषण के पास सब कुछ था, राज्य था, पाठ था, परिवार था, मित्र थे, धन था, दौलत था, उसके बाद में भी उनकी लालसा थी कि हम भगवान राम के चरणों में कभी समर्पित हों, और सब कुछ छोड़ के भगवान राम के चरणों में वो समर्पित हुए। तो उनके चरित्र से इतने प्रभावित होते थे, वही चीज हमेशा हम अंतर ध्यान करते रहते थे कि हे भगवान, हे रंगनाथ, आपकी आप अपनी सेवा में हमको कभी बुलाते हो। एक भक्त के जीवन में ये जो लालसा है ना, ये बहुत ही प्रमुख चीज है, बहुत ही अनिवार्य है। भक्त के जीवन में ये जो लालसा है यही आपकी चित्त की शुद्धि करती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भामिता मति कृत्याम यदि कुतोपि लव्यते तत्र लोलियम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतम न लव्यते। यदि किसी को कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, किसी को कृष्ण के रस की भक्ति चाहिए, कृष्ण के रस के भक्ति का आस्वादन करने का यदि मन में इच्छा है तो क्रियताम कुतोपि अभी लभ्यते, जहां भी मिले उसको जाके खरीद लो। तभी सवाल आता है कि हमारे मन में कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने का, उसके रस का आस्वादन करने का हमारे अंदर में लोभ उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं रूप गोस्वामी कि आप कहीं भी मिले वहीं से जाके आप खरीद लो। तो कहां से खरीद लेंगे, उसका मूल्य क्या रहेगा? तो फिर अगले लाइन में कहते हैं तत्र मूल्यम लौल्यम, तत्र मूल्यम अपि लौल्यम एकलम, उसका मूल्य केवल लालच है। आपके अंदर में लालसा रहनी चाहिए, आपके अंदर में वो लालच रहना चाहिए कि हमको कृष्ण भक्ति के रस का आस्वादन करना है, वही उसकी मूल्य है, वही उसका कीमत है, बाकी कोई कीमत नहीं है उसका। जन्म कोटि सुकृतम ना लभते, आप यदि ये मूल्य नहीं चुका सकते हैं तो जन्म कोटि कितने जन्म ले लो, कितना भी कुछ कर लो, ये आपको स्वीकृति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ये लालसा युक्त जो प्रार्थना थी भगवान ये राजा कुलशेखर का कि हम रंगनाथ में रंगनाथ जी की सेवा करने में कभी जाएंगे, तिरुपति में वेंकटाचलपति की सेवा करने कभी जाएंगे, वहां का हम वनस्पति कभी बन सकते हैं, कभी कीड़ा बन सकते हैं, यहां तक कहते थे कि हमको वहां पे सेवा करने के लिए किसी तरह से आप बुलाओ, वहां पे सेवा करने के लिए कोई निमित्त मात्र करो कि मैं वहां पे आके आपकी सेवा करूं, मेरे को वहां का वनस्पति बना दो, वनस्पति के लायक नहीं हूं तो वहां का एक कीड़ा बना दो, लेकिन उस जगह पे, उस क्षेत्र में, उस वैष्णव के संग में हमको बुलाओ जहां पे हम वो सेवा कर सकते हैं। वहां का एक तिनका भी हमको आप बना देते हो तो मैं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज कुलशेखर का एक विशेष गुण था कि ये माना करते थे कि जितनी भक्ति मैं भगवान के ऊपर करता हूं, जितनी सेवा मैं भगवान के तरफ करता हूं, उतनी ही सेवा यदि हम भगवान के भक्तों के प्रति करूं, उनके वैष्णव पे करूं, तो उससे ज्यादा हमको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि हरेक संप्रदाय में वैष्णव सेवा का बहुत ही प्रमुख विश्लेषण किया गया है, लेकिन खासकर ऋषि श्री संप्रदाय में, रामानुजा संप्रदाय में वैष्णव सेवा को बहुत ही प्रमुखता दी गई है। अब राजा कुलशेखर के अलवर के जितने भी कविताएं हैं उनको पढ़ेंगे ना, उसके पढ़ने में किसी भगवान के रूप का गुण का ये वर्णन कर रहे हैं तो पढ़ने वाले को ये लगेगा कि ये भगवान का गुण का रूप का वर्णन कर रहे हैं, और धीरे धीरे लास्ट में आके कहेंगे कि मैं उस भगवान को अपने ऊपर, अपने भगवान के, उस भगवान के चरणों में मैं अपने को समर्पित करता हूं। लेकिन राजा कुलशेखर के अलवार के कविताओं में इस तरह का नहीं है। जब उनकी कविता खत्म होती है तो लास्ट में वो कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे को इतना दया करो कि मैं भगवान के उस भक्त के चरणों में अपने को समर्पित करूं। तो इनको इस तरह का भाव था, इस तरह की वैष्णव सेवा थी, तो ये हमेशा इनके मन में इस तरह का भाव आया करता था। जिस तरह मैंने बताया कि अपने राजपाट में तनिक भी ध्यान नहीं देते थे, सभी मंत्रियों को सौंप दिया था, मंत्रीगण बहुत परेशान थे क्योंकि वो तो भक्त थे नहीं, उनको लगता था ये राजा को क्या पागलपन हो गया है, राजा तो पागल हो गए हैं, भगवान के प्रति सब काम काज छोड़ के ये क्या चीज में लगे रहते हैं कि हमको रंगनाथ, हमको रसीरंगम जाने का है, हमको तिरुपति जाने का है, हमको ये सेवा करने का है, हमको वो सेवा करने का है, क्योंकि वो भक्त नहीं थे। इस तरह से उनके मन में इस तरह का भाव आया करता था हमेशा। लेकिन इस तरह का जो भाव था, ये इस तरह का जो भाव था इनके प्रति, ये धीरे धीरे जितनी भी तीव्रता आती रही इस भक्ति में, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ते रहा, इतना गाढ़ापन आते रहा, उतने ही ये दुनिया से, अपने राज्यपाट से उतने ही ये वैराग्य होते गए, उतना ही इनका लोभ उससे कटते चला गया। श्रीमद् भागवत में कहा जाता है वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रजोत जानाति असु वैराग्यम ज्ञानम न च हेतुकम। भक्ति जो है उच्च श्रेणी का है और वैराग्य और ज्ञान जो है निम्न श्रेणी का है। जब आप में भक्ति आती है तो वैराग्य और ज्ञान से ऐसे ही आपको विरक्ति हो जाती है। उसके लिए पहले अपने को ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि पहले हमको वैराग्य आ जाए, फिर हमको ज्ञान आ जाए, फिर भक्ति आएगी, क्योंकि भक्ति एक उच्च श्रेणी का, उस श्रेणी पे स्थित है, उस श्रेणी का स्तर का चीज है, और ज्ञान जो और वैराग्य है वो निम्न श्रेणी का है। यदि कोई बालक दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण होता है, दक्षिण कक्षा में पढ़ता है, यदि हम उससे पूछते हैं कि आठवीं नौवीं कक्षा तुमने उत्तीर्ण किया, तो ये हमारी बेवकूफी रहेगी। आठवीं कक्षा नौवीं कक्षा पास करने के बाद ही वो दसवीं कक्षा में आ सकता। तो इस तरह से इनका जीवन चल रहा था। राजपाट राज में सभा में बैठे हैं, गहरी सांस लेके कि मैं कभी रंगनाथ की सेवा में जाऊंगा, कभी मैं वेंकटापति के वेंकट चलपति तिरुपति बालाजी की सेवा में जाऊंगा। अंतर की अंतर अंतर्यात्मा इतनी भक्ति में इतनी तीव्र हो गई थी कि बाह्य दशा से इनको कुछ मतलब नहीं था, किसी को भी कुछ भी बोलते थे। ये बात छुपी हुई नहीं थी कि इनके अंदर में क्या चल रहा है। नगर में पूरे राज्यपाट में भी यही बात चलते रहता था, राजा तो भगवान के पीछे पागल हो गए हैं। डेली बोलते रहते हैं कि आज मैं रंगनाथ श्रीरंगम चला जाऊंगा रंगनाथ की सेवा में, आज मैं तिरुपति चला जाऊंगा बालाजी की सेवा में। अंदर से वो वहां के प्रजा बहुत ही बेचैन रहती थी कि क्योंकि बहुत ही अच्छे राजा तेजस्वी राजा थे, सबका ध्यान रखते थे, अगर ये राजा चले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा। उन लोगों ने बहुत अच्छा वहां पे श्लोक लिखा है, खुश्यते यस नगरे रंग यात्रा दिने दिने, खुश्यते यस नगरे रंग यात्रा दिने दिने, तम हम शिखरम बंदे राजानम कुलशेखरम। खुश्यते मतलब गॉसिप जिसको कहते हैं, खुशबुस चलते रहता था पूरे नगर में, एक ही बात चलती रहती थी कि आज राजा तो श्रीरंगम में चले जाएंगे, आज राजा श्रीरंगनाथ की सेवा में चले जाएंगे। तो कहते हैं खुश्यते यश नगरे, इस नगर में जहां पे कि यही घुसपुस चलती रहती है, रंग यात्रा दिने दिने कि वो रंगनाथ की यात्रा में चले जाएंगे, उस राजा कुलशेखर को मैं हजारों बार प्रणाम करता हूं। सबके सब प्रजा के मन में बेचैनी भी रहती थी कि क्या होगा नहीं होगा। राजा क्या क्या करते थे, कुलशेखर आलवार ने क्या किया, जितने भी महान महान पंडित थे, वैष्णव थे सभी को अपने राजपाट में बुलाते थे, अपने इसमें राज्य में बुलाते थे, और अनेक शास्त्रों का वहां पे पठन चलते रहता था और राजा उसको श्रवण करते रहते थे, दिन भर उनका यही काम रहता था। और जो सुनते थे उसी महासागर से उन्होंने बहुत ही महान महान बहुत ही कीमती रत्न निकाले, और उस सभी रत्नों को स्तोत्र रूपी रत्नों को पिरो के उन्होंने एक मुकुटमाला स्तोत्र बनाया, जिसको कहा जाता है मुकुंदस्य माला स्तोत्र, मुकुंद के लिए माला, जो पूरा मुकुंदमाला स्तोत्र हम लोग पढ़ते हैं, मुकुंदस्य माला स्तोत्रम, उसी जवाहरात से उसी सागर से निकाले हुए अमूल्य वो महारत्न है, जिसको निकाल कर उन्होंने एक माला का रूप दिया और भगवान के लिए समर्पित किया। जितने भी शास्त्र वो पढ़ते थे उसमें सबसे उनको जो प्रिय था वो रामायण था, बहुत ही प्रिय था। उनके राजमहल में सीताराम राम सीता का बहुत अच्छा मंदिर भी था, विग्रह भी था वो, जहां उनकी सेवा किया करते थे। ऐसे चलता था कि जब रामायण का पाठ हुआ करता था और जब कुछ ऐसा प्रसंग आता था तो उस प्रसंग की तरह वहां उत्सव मनाया जाता था। यदि कुछ बहुत ही खुशी का प्रसंग आया तो सबके बीच में शोभा यात्रा निकाली जाती थी, सभी वैष्णवों को बहुत ही भोज कराया जाता था, अनेक प्रकार के दान दिए जाते थे, बहुत तरह के वैष्णवों को अन्य प्रकार का फीस्ट भोज दिया जाता था। एक बार की बात है कि ये प्रसंग चलते चलते वो प्रसंग आता है दंडारण्यकांड का, जहां पे कि राम अपने भाई श्री लक्ष्मण और सीता के साथ जनस्थान में है, और उसी समय शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा इच्छा जाहिर करती है कि राम से कि हमको आपसे विवाह करना है। जब राम उसको ना बोल देते हैं तो वो लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण उनका नाक और कान काट देते हैं। इसको लेके वो अपने भाई खरदूषण को जाके कंप्लेन करती है। खरदूषण महान राक्षसों को लेके आते हैं कि किसने हमारी बहन के साथ ऐसा किया, तो यहाँ पे सभी राक्षसों का वध हो जाता है और राक्षस भी वापस चले जाते हैं। फिर खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेके, जो महावली राक्षस हैं, उसको लेके खुद आते हैं। इस समय देवलोक में सभी देवी देवता अपने विमान के द्वारा उस जनस्थान के ऊपर स्थापित हो जाते हैं कि देखने के लिए कि श्री राम अभी क्या करते हैं। गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, चारण्य लोग, ऊपर के जितने भी लोग हैं, महर लोग, जन लोग, सभी के देवी देवता आके स्थित हो जाते हैं और दृश्य देख रहे हैं कि 14,000 राक्षस आ रहे हैं, यहाँ राम अकेले है, लक्ष्मण भी है, लेकिन लक्ष्मण को उन्होंने क्या किया, उनको वहां पे जनस्थान में एक जगह था, बोला कि यहाँ पे सीता को रखो और तुम इसके सामने खड़े हो जाओ कि कुछ भी नहीं हो जा, मैं इन लोग को संभाल कर आता हूं। वाल्मीकि रामायण में एक स्तोत्र आता है, चतुर्दश शस्त्राणि राक्षसम भीम कर्मानाम एकस्य रामो, जैसे ये शब्द आया उनके, जैसे ये शब्द को सुना कि चतुर्दश सहस्त्राणी राक्षसम भीम कर्मानाम, 14,000 राक्षस हैं, वो भी सब बहुत ही बलवान हैं, और एकस्य ही रामो, एक ही राम है। तो देवी देवता आपस में बात करते रहे, बात करने लगे कि ये 14,000 राक्षस हैं और राम अकेले हैं, इन लोग का सामना कैसे कर सकते हैं। जैसे ही एकस्य रामो ये प्रसंग उनके में आया तो वो भाव विभोर हो गए। पहले तो ये देवी देवता बोल रहे थे कि हे राम, ये राक्षसों की तुम उसी तरह से हत्या करना जिस तरह से विष्णु ने राक्षसों को अपने चक्र से मारा था। लेकिन जैसे ही देखा कि एकस्य चतुर्दश सहस्त्राणी राक्षसम भीम कर्मानाम, ये सब बड़े बड़े महावाली राक्षस, और 14,000 और एकस्य रामो युद्धम कुथम भविष्यति, ये युद्ध कैसे हो सकता है। जैसे ही ये पंडित वो जो वहां पे पाठ कर रहा था, जैसे ये श्लोक का उच्चारण किया, उसने राजा कुलशेखर इतने भाव विभोर हो गए और गुस्से में खड़े हुए और सेनापति को आदेश दिया कि सेनापति अपनी पूरी सेना को जन्मस्थान की तरफ रवाना करो। सभी सेना, पूरी सेना को जनस्थान के राक्षस, तुम लोग, तुम ये मत समझो कि राम अकेले हैं, उनके साथ इनके ये वैष्णव भक्त भी हैं जो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। मैं मानता हूं राम आपके पास सब कुछ है, चक्र है, गदा है, सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके आपके ये तुच्छ भक्त वैष्णव भी तो है ना, ये कभी काम आएंगे। सेनापति चलो कूच करो। सभी सेनापति चुप चुप अंदर से बात करने लगे कि ये क्या मुसीबत आ गई, जनस्थान की तरफ किधर कूच करेंगे। सबको चुप बोला, सब चुप हो जाओ और मैं जो बोलता हूं वो करो। आगे आगे सबसे अग्रमी में राजा कुलशेखर पूरे जो साजो सामान, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ सेना कूच कर जाती है जनस्थान की तरफ। यहाँ पे 50-60 जो सेनापति थे वो आपातकालीन बैठक बुलाते हैं कि अभी राजा को कहां से लाएंगे, ये किस तरफ कूच कर गए। फिर एक सेनापति बोलता है कि एक तरकीब है, उन्होंने एक 50 सेनाओं का एक गुत्थी, जो विश्वासी सेना थे उनका एक यूनिट बनाया और बोला कि तुम ऐसा करो कि राजा इस तरफ से जा रहे हैं, तुम इस रास्ते से जाओ और बहुत ही तीव्र गति से जाओ और आगे जाके यू टर्न लेना और फिर से उसी रास्ते पे वापस आना और कहना राजा को कि हम लोग उसी जनस्थान से आ रहे हैं, राम ने सभी राक्षसों का वध कर दिया है, राम विजयी हो गए हैं, सीता और राम, लक्ष्मण और राम बहुत ही प्रसन्न हैं। बस ये सुनते ही राजा फिर से वापस आ जाएंगे। ये 50 जो सेनापति का एक ग्रुप था वो दूसरे गति से, दूसरे रास्ते से, बहुत ही तीव्र गति से जाते हैं और आगे जाके उस रास्ते से ही वापस आते हैं जिस रास्ते से कुलशेखर का पूरा सेना, राजा कुलशेखर का पूरा सेना जा रहा था। और रास्ते में आके मिलते हैं और कहते हैं कि हे राजन, हम लोग उस स्थान से आ रहे हैं, उस जनस्थान से आ रहे हैं जहां मैंने खुद देखा, आंखों से देखा कि जहां राम ने सभी 14,000 राक्षसों का वध कर दिया है और बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं वो। आप चिंता मत करो, आप यहां से लौट जाओ। बहुत ही खुशहाली से वहां से वो लौट जाते हैं। आके यहाँ पे बहुत ही वैष्णवों को फीस्ट दिया जाता है, भोज होता है, बहुत ही उल्लास का समय है और बहुत ही उल्लास करते हैं। राजा कुलशेखर का जीवन इस तरह से जीते थे। ये भौतिक संसार में ये कथा सुनाएंगे ना तो उन लोग को अचंभित होंगे, वो लोग बोलेंगे अरे ये क्या सुना रहे, ये तो ऐसे ही बकवास है, कोई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सुना और सेना को लेके निकल गए। लेकिन जब भक्त लोग इस कथा को सुनेंगे तो उनको इतना अविश्वास नहीं होगा, क्योंकि एक स्थिति आती है कि जब आपका जो अंतःकरण है उसमें जो भाव के स्तर पे जब आप पहुंचते हैं तो वही चीज आपको बाह्य अवस्था में भी प्रकट होता है। और भक्ति जब अंदर में इतनी दीर्घादिन कंसंट्रेटेड हो जाती है, गाढ़ापन आ जाता है, तीव्रता आ जाती है, तेज आ जाती है, तो वही जब बाहर में दिखता है तो भक्त को बाहर में क्या दिख रहा है, कैसा लग रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता है। जब कृष्ण वृंदावन से चले गए थे, गोपियां विप्रलंब भाव में थी, उनके वियोग में विरह किया करती थी, हमेशा उनमें उनकी लीलाओं के प्रति मनन किया करती थी, केवल मनन ही नहीं किया करती थी, कभी उनके लीलाओं के बारे में खाली मनन नहीं, उनके लिए विरह ही, खाली चिंता शोक ही नहीं किया करती थी। बल्कि कृष्ण की जो लीलाएं थी वो उस कृष्ण की लीलाओं पे जीती थी, उनको अपने जीवन में उतारती थी। क्या क्या करती थी वो, जैसे पूतना बध है, सभी गोपियां मिल जाती थी, उसमें से एक को पूतना बना देते थे और फिर एक कृष्ण बन जाता था और उस पर पूतना का वध करता था। उस लीलाओं को वो जीवन में जीती थी, उनका वही बाह्य स्वरूप और अंतरंग स्वरूप था। ग्वाल वाले जिस तरह से कृष्ण ग्वाल वाले को लेके जाते थे, उसी तरह से गोपियां भी एक को ग्वाल बना देती थी, एक को ये बना देती थी। जो भी लीलाएं कृष्ण करके गए थे वही ये लीलाएं यहां पे ड्रामा किया करती थी। इस तरह से उस लीलाओं में वो जीती थी, इसके अंतःकरण में वही भाव हमेशा रहता था। हम चैतन्य लीला में भी, चैतन्य महाप्रभु का भी इसमें एक वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुआ था और दक्षिण की यात्रा में गए थे, तो जब दक्षिण के जो दक्षिण वृंदावन है जिसको मथुरा, दक्षिण मथुरा है जिसको अभी प्राचीन अभी के से वर्तमान के समय में मदुरई कहा जाता है, जब वहां पहुंचे वहां तो एक भगवान राम का बहुत ही बड़ा भक्त था, ब्राह्मण था, उसने चैतन्य महाप्रभु को दिन के प्रसाद के लिए बुलाया। चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 12 बजे प्रसाद के लिए पहुंच गए। जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 12 बजे प्रसाद के लिए पहुंचे तो देखा तो वो ब्राह्मण ऐसे पागल की अवस्था में इधर उधर घूम रहा है, केवल प्रसाद का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने थोड़ा देर वहां पे इंतजार किया कि अभी प्रसाद आ जाएगी, लेकिन देखा सब कुछ रसोई में भी कोई नहीं है, कोई प्रसाद बना भी नहीं रहा है और ये ब्राह्मण तो ऐसे ही पागल के जैसा इधर से उधर घूम रहा है। फिर उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण 12 बज गए हैं, प्रसाद का क्या? ब्राह्मण कहता है कि हे स्वामी, अभी तो हम लोग जंगल में हैं, हमारा भ्राता लक्ष्मण कंदमूल लेने के लिए जंगल गया हुआ है, जब वो कंदमूल लेके आएगा तब माता सीता प्रसाद बनाएगी, तब मैं आपको ग्रहण आपको अर्पण कर सकता हूं। वो रामाभेश में था, वो इस अवस्था में नहीं था। तो किसी तरह से करते करते 3 बजे प्रसाद बनकर महाप्रभु के सामने में आया। महाप्रभु के सामने में जब प्रसाद बन के आया तो महाप्रभु ने प्रसाद को देखा तो देखा तो देखा ये बहुत ही क्रोधित है, बहुत ही दुख में है और बहुत ही दूसरी अवस्था में है, और खाली हमारे को ही प्रसाद दिया, इसने तो प्रसाद लिया ही नहीं। तो महाप्रभु पूछते हैं, हे ब्राह्मण आप प्रसाद नहीं ग्रहण करोगे क्या? तो ब्राह्मण कहता है कि हे महाप्रभु, हमको तो जिस अवस्था में मैं हूं उस अवस्था में तो हमको या तो अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए था या नदी में पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। हमारे अंदर अग्नि ज्वाला अग्नि जल रही है, लेकिन हमारा शरीर ऐसा है कि जो शरीर हमको छोड़ नहीं रहा है, हमारी मृत्यु नहीं हो रही है। महाप्रभु पूछते हैं कि हे ब्राह्मण क्या हो गया इस तरह का? आप पूछते हो क्या हो गया? हमारी जननी सीता को राम रावण जैसे राक्षस ने स्पर्श किया और उसको लंका लेके चला गया है। हमारी जननी सीता को रावण ने स्पर्श किया, ये सोच के हमारे अंदर में जो आग जल रही है उसमें हमारे जैसे भक्त को जीने का क्या अधिकार है जब मैंने उनको बचा नहीं पाया? महाप्रभु कहते हैं कि हे ब्राह्मण आप तो बहुत ही विद्वान हो, बहुत ही वेद का ज्ञाता हो, आपको ये जानना चाहिए कि जब रावण सीता का हरण करने आया था तो सीता जो असली सीता थी वो तो अग्निदेव की कृपा से आच्छादित हो गई थी, ओझल हो गई थी, और ये तो भौतिक माया सीता प्रकट हुई थी जिसको रावण अपने साथ लेके गया है। और दूसरा ये मैं बताता हूं आपको कि सीता तो हमारी जननी है, ये तो श्री शक्ति है और रामचंद्र की पत्नी है, और रामचंद्र जी तो हमेशा सचिदानंद के भाव में रहते हैं, आध्यात्मिक भाव में रहते हैं, तो सीता जी भी आध्यात्मिक भाव में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उनका भी रूप तो सचिदानंद रूप ही है। जो सचिदानंद रूप में रहता है उसको ये भौतिक शरीर तो देख नहीं सकता है, तो स्पर्श करने की बात कहां से आती है? इस आध्यात्मिक शरीर को तो भौतिक शरीर देख ही नहीं सकता है, तो उसको स्पर्श कहां से कर सकता है। तो इसलिए आप चिंता मत करो, वो सीता को स्पर्श किया, वो तो देख ही नहीं सकता है, तो स्पर्श कहां से कर सकेगा। इसके बाद वो ब्राह्मण प्रसन्न होता है, महाप्रभु अपने दक्षिण की यात्रा को और बढ़ाते हुए रामेश्वरम के जाते हैं, रामेश्वरम की तरफ जाते हैं, और रामेश्वरम की तरफ जाते हैं जब जहां सेतु बंद है वहां पे सागर में स्नान करते हैं, और वहीं पे देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण बैठ के कुर्म पुराण का वहां पे वर्णन कर रहे हैं, वहां का पाठ पाठ कर रहे हैं। संयोग से कुर्म पुराण में भी वही अध्याय चल रहा था जो यहाँ पे ये ब्राह्मण ने उठाया था, वहां पे भी यही अध्याय चल रहा था कि रावण सीता का हरण करने आता है, सीता अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं, अग्निदेव की दया से सीता शिव जी की पत्नी पार्वती के धाम में उनको छोड़ते हैं, और यहाँ पे एक माया तीर्थ सीता का उद्गमन करते हैं और उसी को रावण अपहरण करके लेके जाता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, वो पोथी से पढ़ रहे थे, मूल ग्रंथ से उसका पाठ कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बोला कि इस मूल ग्रंथ का एक प्रतिलिपि हमारे को चाहिए। तो ब्राह्मण ने बहुत दया किया, उनको उस मूल ग्रंथ का एक प्रतिलिपि महाप्रभु को दिया। ब्राह्मण महाप्रभु उस मूल ग्रंथ के प्रतिलिपि को लेके फिर से ब्राह्मण मदुरई जाते हैं और उस ब्राह्मण को देते हैं कि ब्राह्मण जो मैंने तुमको बताया था, देखो इस मूल गुरु पुराण में, मूल ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, बोले आप कोई मामूली सायन सन्यासी नहीं हो, आप मेरे लिए साक्षात रामचंद्र हो। इसके बाद यात्रा को आगे करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भाव वेश में आते हैं ना, तो अपनी जो बाह्य स्थिति रहती है, वो बाह्य स्थिति तो क्या रहती है, अंतरंगा स्थिति जो रहती है वो बाह्य स्थिति से जरा सा भी मेल नहीं खाती। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर के राज्य में मंत्री लोग बहुत चिंतित थे, क्योंकि आए दिन खुश्यते यश नगरे रंग यात्रा दिने दिने, किस दिन रंग श्रीरंगम के लिए निकल जाएंगे किसको मालूम है। डेली बोलते रहते हैं, गहरी सांस लेते हैं, सभा चलती रहती है उसके बीच में गहरी सांस लेके बोलते हैं कि हम अभी रंगनाथ की सेवा के लिए निकल जाएंगे, तो क्या मालूम किस दिन निकल जाएंगे। तो जितने ब्राह्मण पाठ किया करते थे उनका एक मीटिंग बुलाया इन लोगों ने, सेनापति ने, मंत्रियों ने, जो कि भक्त नहीं थे, और उनको बताया कि आपको एक आदेश है, इस आदेश को आप बहुत ही सीक्रेट रखना, बताना नहीं, कि जब आप रामायण का पाठ करते हो और आप समझते हो कि जहां आप ऐसा दुख का वर्णन करते हो, ऐसा तकलीफ का वर्णन करते हो जिससे कि हमारे राजा भाव विभोर हो जाते हैं और अपने आपे में नहीं रहते हैं, तो वो जो पाठ आए, वो जो पोर्शन आए, तो आप उसको ओवरलुक कर देने का, उसको स्किप कर देने का, उसको थोड़ा संक्षेप में करके उसे आगे निकल जाने का, और जहीं खुशी का बात है, कुछ विजयी का है, तो उसको खूब अच्छे से वर्णन करो, क्योंकि वो तो सब खुशी का बात है, राजा भी बहुत खुश होंगे और उसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। करते करते इसी तरह से पाठ चलते रहा, राजा का जीवन भी चलते रहा। राजा हमेशा उसी भाव में रहते थे कि हम कभी इस लंका से निकल के, क्योंकि विभीषण उनके रोल मॉडल थे, हमेशा विभीषण का याद करते थे। जिस तरह से विभीषण ने अपने राज्य पाठ परिवार मित्र सबको छोड़ के राम के चरण में, राघव के चरण में उसने अपने को समर्पित किया, उस तरह से मैं कभी इस लंका से निकल के अपने को श्री रघुनाथ के चरण में समर्पित करूंगा। तो इस तरह से चलता रहा। एक बार की कहानी है, एक बार की कथा है कि जब जो ब्राह्मण ये पाठ करता था रामायण का, वो किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए से उस जगह से, उस क्षेत्र से कहीं बाहर चला गया। उसने अपनी जगह अपने पुत्र को भेज दिया कि जाओ हमारा पुत्र तब तक ये पाठ करेगा। पुत्र को ये जो डिसीजन लिया गया था वो मालूम नहीं था कि इस तरह का बात है। और रामायण पाठ करते करते फिर से वही प्रसंग आ जाता है कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है और उसको लंका लेके चला गया। जैसे ही ये प्रसंग आया और वो ब्राह्मण का जो पुत्र था उसको विस्तार में उसका वो उल्लेख करने लगा, तो राजा तो यहाँ पे ओत प्रोत हो गए और इतने गुस्से में खड़े हुए कि, और सेनाओं को एक आदेश दिया कि चलो हम लोग समुद्र पार करके लंका जाते हैं और माता सीता को वहां से लेके आते हैं और रावण का वध करते हैं। सभी सेनापति ने अपने सर पे हाथ रखा कि ये इसको बताया नहीं इसने किस मुसीबत में फिर से अपने को डाल दिया। किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसको चुप करके बैठा दिया। बाकी सेनापति चुप रहे कि रावण का वध तो बाद में होगा, हम कुछ बोलेंगे तो उससे पहले हमारा ही वध हो जाएगा। और आगे आगे राजा कुलशेखर, पीछे से पूरे सेना समुद्र की ओर प्रस्थान कर गए, कहीं नहीं रुके, सीधा समुद्र में राजा कुलशेखर प्रवेश कर गए। सेनापति बोल रहे हैं कि हे राजन, पानी है, समुद्र आ गया, आप रुक जाओ रुक जाओ। नहीं, राजा कुलशेखर समुद्र में प्रवेश कर गए और आगे चलते गए चलते गए। जब पानी यहां तक आ गया, तब तक सेनापति चिल्लाते रहे कि हे राजन वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ। राजा आगे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। इसी दौरान क्या होता है कि महल में जो राम और सीता के विग्रह थी, उन्होंने अपने दृष्टि से देखा कि हमारा भक्त तो समुद्र में चला जा रहा है और पानी यहां तक पहुंच गया है। तो सीता को राम कहते हैं, राम जी सीता को कहते हैं कि हे सीते, अपने को तुरंत अविलंब वहां पे जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा इमरजेंसी आ जाएगा, क्योंकि हमारा भक्त के यहाँ पानी यहां तक आ गया है। तो हवाई मार्ग से राम सीता जाते हैं लंका की तरफ से, और लंका की तरफ से उस रास्ते से समुद्र के तट पर वो पैदल चलकर आते हैं। और राजा कुलशेखर, जब पानी बिल्कुल इस छोर तक इस ओठ तक आ गया था, पानी बिल्कुल अंदर ही जाने वाला था, तो राजा कुलशेखर ने साक्षात और सीता राम का दर्शन किया, और सीता राम ने उनका हाथ पकड़कर उठाया, उसको हाथ से ऊपर उठाया, बोला हे वत्स, जिस तरह से इस भौतिक संसार से मैं अनेक जीवों का, ये बद्ध जीवों को उठाकर अपने धाम में ले जाता हूं, उसी तरह से हे वत्स, मैं तुमको इस सागर के तट से उठाकर तुम्हारे शहर पे जाके रखता हूं। तुम वत्स चिंता मत करो, मैं अभी लंका से आ रहा हूं, रावण का मैंने बद्ध कर दिया है, सीता हमारे साथ में है, तुम तनिक भी चिंता मत कर, तुम हर्षोल्लास के साथ मेरे साथ और चलो, और मैं तुमको अपने शहर में जाकर छोड़ के आता हूं। भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, तेषाम अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भामि च न चिरात् पार्थ मई अवस्थिता चेतसाम, कि जो हमारा भक्त है, जो अविलंब हमारी भक्ति करते रहता है, मैं उसको समुद्धर्ता, मैं इसको यहां से डिलीवर करता हूं, इस संसार सागरात, ये जो संसार भौतिक संसार है, वहां से मैं उसको वहां से पूरा लिप्त कर देता हूं, उसको उठा के अपने धाम में लेके जाता हूं। ये जो दृश्य था, ये केवल राम सीता और कुल राजा कुलशेखर आलवार नहीं देखा था, बाकी सेनापति सबको नहीं दिखा था। जब राजा वापस आने लगे तो सेनापति लगा, बोले चलो इनको बुद्धि तो आ गई, अंत में बुद्धि आ गई, जो पागलपन था वो थोड़ा दूर हुआ और ये अपने बुद्धि में तो आ गई कि वापस आने लगे। ये इस तरह से हम देखते हैं। इसके बाद जब राजा कुलशेखर के अपने राजमहल में आते हैं तो सेनापति सब बहुत चिंतित हैं कि इस तरह से राज्य किस तरह से चलेगा, ये तो बहुत ही कठिनाई, ये तो राज्यपाट में कुछ ध्यान नहीं देते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत ही एक आपातकालीन बैठक बुलाया, बोला किसी भी प्रश्न किसी भी समस्या का सुलझाने के लिए उसके तीन होते हैं, कि पहले तो समस्या है क्या बताओ, पहले समस्या है क्या, तो समस्या ये है तो वो समस्या किस कारण से है, हम लोग पहले उसका पता करेंगे, समस्या है क्या, फिर वो किस कारण से है और उस समस्या का फिर समाधान क्या है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये फिर समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो एक सेनापति कहता है समस्या तो ये है, सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि हमारे राजा को भक्ति का रोग लग गया है, ये जो भक्ति का रोग है ये हमारे राजा को लग गया है, और ये भक्ति का रोग कोई मच्छर काटने से, कोई गंदा पानी पीने से, कुछ इनडाइजेशन से नहीं होता है, इसका कारण वैष्णव है, ये जो वैष्णव है ना यही भक्ति के कारण है, और हमारे राजा को वैष्णव के प्रति इतनी श्रद्धा है कि यही इनकी भक्ति को और ही उत्तेजित करते रहता है, उनको तीव्र करते रहता है, और राजा पागल होते जा रहे हैं। तो सेनापतियों ने पूछा फिर इसका उपाय क्या है, ठीक है इनको रोग तो भक्ति हो गई, कारण भी वैष्णव है, तो लेकिन इसका उपाय क्या है, इसको कैसे, तो उपाय तो यदि हम सभी वैष्णव को यहां से भगा देते हैं तो राजा तो रहेंगे नहीं, वो भी उनके पीछे चले जाएंगे, यदि हम राजा को श्रीरंगम में जाने की अनुमति दे देते हैं तो वहां तो सभी वैष्णवी हैं, वहां से फिर कभी ये वापस ही नहीं आएंगे। तो एक उसमें सेनापति बुद्धिमान था, वो बोलता हमारे दिमाग में एक बात है कि जब राजा बोले कि हमको श्रीरंगम जाना है तो उनको आप जाने दो, और जब से ही वो यात्रा अपना आरंभ करेंगे, जैसे यात्रा आरंभ करेंगे तो हमारा एक टोली आगे से आके उनको खबर देगा कि इस क्षेत्र से कुछ वैष्णव आए हुए हैं, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इनको वैष्णव के प्रति इतनी ही इतनी मतलब प्रार श्रद्धा है कि उसको छोड़ के वो फिर जा ही नहीं सकते। तो उन लोगों ने, सभी सेनापतियों ने बहुत ही सभी वैष्णवों, सभी अलग अलग जगह क्षेत्रों के वैष्णवों की एक सूची बनाई और इस तरह से चलते रहा। जैसे ही राजा बोलते थे नहीं आज तो मैं चला जाऊंगा रंग यात्रा दिने दिने, आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, तो यहां से वैष्णव को फटाक से बुलाते थे और जाके उनको खबर करते थे कि राजन ये वैष्णव इस जगत से आए हुए हैं। तो उनके मन में उत्कंठा होती थी कौन वैष्णव आया है, उसको हमारे जगत पे आया है तो उनको उनकी सेवा करनी चाहिए, वहां से वापस आ जाते थे। ये पॉलिसी तो बना दिया उन्होंने, जिस पॉलिसी के अनुसार, जिस रूल के अनुसार ये देखा गया कि यहां से वैष्णव, यहां से राजा। जय श्री श्री राधा की हरि। यहां से वैष्णव जा नहीं रहे हैं, यहां से राजा जा नहीं रहे हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई कि पूरे राज्य में केवल वैष्णव ही वैष्णव भर गए, क्योंकि राजा वैष्णव को इतना प्यार करते थे, इतना सम्मान देते थे, उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी। जो सीक्रेट से सीक्रेट कक्ष हो, जहां भी राजमहल में उनके कक्ष में जहां भी आना हो जाना हो, आप आओ जाओ, कोई रुकावट नहीं है। बहुत ही हर्ष, सब बहुत ही आनंदमय रहते थे। तो कोई भी वैष्णव जो आता था यहां छोड़ के जाता ही नहीं था। तब रोटी चूल्हे से निकल के, तवे से निकल के आग में चली गई। सेनापति कहते हैं कि ये क्या मुसीबत हो गया, ये तो पूरा जो पहले तो इक्के दुक्के जगह पे भगवान कृष्ण कथा राम कथा हुआ करती थी, अब तो जहां भी जाओ, मॉल में जाओ, बाजार में जाओ, नुक्कड़ में जाओ, सड़क पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, सब जगह कृष्ण कथा और राम कथा ही चलती रहती है, क्योंकि पूरा नगर तो वैष्णव से भर गया है। इसको क्या कर सकते हैं। तो एक उसमें और बुद्धिमान था, वो बोलता है कि अपने को ये देखना पड़ेगा, वैष्णव को भगाने से तो प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होने, ये समस्या का सुलझाव नहीं, ये समस्या नहीं सुलझ सकती है। अपने को देखना पड़ेगा कि ये राजा का वैष्णव के प्रति इतनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को हम कैसे तोड़ सकते हैं। यदि हम श्रद्धा को तोड़ दिए, जो राजा का वैष्णव के प्रति श्रद्धा है, राजा का कुलशेखर का मानना यह था कि यदि कोई जीव निष्कपट भाव से किसी वैष्णव की सेवा करता है तो उसकी सेवा का जो उसको परिणाम मिलेगा वो लाखों गुना भगवान की सेवा करने से ज्यादा रहेगा। इसलिए वो बहुत ही तीव्रता से वैष्णव की सेवा किया करते थे। इसीलिए हम लोग भी कहते हैं कि भक्तों का जो एसोसिएशन है, भक्तों का जो संबंध है, भक्तों के साथ जो संगति है, बहुत ही तीव्र रहनी चाहिए। तो उस श्रद्धा को कैसे तोड़ सकते हैं। उस समय ही दशहरा का समय था, तो दशहरा के समय में राम सीता की जो विग्रह थी उसको बहुत ही कीमती ज्वेल से, उसकी मालाओं से उनको अर्पण किया जाता था। तो एक बोलता है कि अभी कल तो दशहरा है और वो कोषागार से, जहां से ट्रेजर से वो माला निकल कर आएगी और भगवान को पहनाया जाएगा, तो हम लोग उस माला को चोरी कर लेंगे, और चोरी कर लेंगे तो हम लोग तो वहां जाते नहीं हैं, और राजा पूछेंगे कि वो कीमती माला, बहुमूल्य माला किसने चोरी किया, तो ये वैष्णव पे ही अपराध आएगा, वैष्णव पे ही इंगित किया जाएगा कि ये वैष्णवों ने ही चोरी किया होगा, हम लोग को क्या लेना देना भगवान क्या माला पहने, क्योंकि हम लोग थोड़ी उधर जाते हैं। तो इसी तरह से किया गया, फिर राजा को खबर किया गया कि वो जो बहुमूल्य रत्न का माला है वो चोरी हो गया। तो राजा ने तुरंत मीटिंग बुलाया कि भाई क्या है, किसने, क्या, कैसे हो गया ये। कहते हैं राजा ये तो सिंपल है ना, आपको समझना चाहिए, वहां तो हम लोग का कुछ लेना देना है ही नहीं, हम लोग तो वहां जाते नहीं हैं, ये वैष्णव ही जाते हैं, आपके जो भक्त हैं यही जाते हैं, जो वैष्णव है जिन पे आपको इतनी अटूट श्रद्धा है, तो इन्होंने कुछ किया होगा, देखा कि इतना बहुमूल्य है, चलो हाथ से निकाल लेते हैं। राजा ने उस बात को सुन लिया और कहते हैं कि हे सेनापति, आप जिस बात को बोल रहे हो उस बात को आप समझ नहीं रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो। ये वैष्णव भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं, इनकी चित्त इतनी शुद्ध है कि ये चोरी करने का विचार तो इनके चित्त में आ ही नहीं सकता है, आप चोरी करने की बात तो दूर रखो, ये तो भगवान के साक्षात दूत हैं, तो ये किस तरह से ये इस तरह से कर सकते हैं। तो जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सरासर गलत है और जो मैं बोल रहा हूं वो सरासर सत्य है, लेकिन मैं राजा हूं इसलिए मैं अपने वक्तव्य को आपके ऊपर थोपूंगा नहीं, मैं साबित करके बताऊंगा कि जो आप बोल रहे हो वो सरासर गलत है। एक सेनापति को आदेश देते हैं कि तुम जाके एक पात्र लेके आओ और उस पात्र में एक जहरीला कोबरा डाल के लेके आओ, जहरीला सांप लेके आओ उसके अंदर। सेनापति जाता है एक पात्र में, घरे में एक जहरीला कोबरा सांप डाल के लेके आता है और बोलता है कि ये पात्र है और इसके अंदर, पात्र को ढक के लाया, जहरीला था ना वो एकदम ढक के लेके आया। राजा कुलशेखर बोलते हैं कि इस घरे में मैं अपना हाथ डालूंगा, इस घरे में मैं अपना हाथ डालूंगा, यदि कोबरा यदि सांप हमको डस लेता है तो मैं मानूंगा कि हमारे वैष्णवों ने चोरी किया है, यदि सांप हमको नहीं डसता है तो तुम लोगों ने किया है। राजा उस घरे में अपना हाथ डालते हैं, बहुत देर तक हाथ डाल के रखते हैं, सांप कुछ नहीं करता है उनको, और हाथ निकालते हैं। तब तक सभी सेनापति ने अपना नतमस्तक कर लिया था कि इस राजा से हम लोग पार नहीं पा सकते हैं। एक सेनापति आके कहता है हमारे से गलती हो गई राजन, हम लोगों ने बहुत बड़ा झूठ बोला, हम लोगों ने आपका जो वैष्णव के प्रति अटूट श्रद्धा थी उसको तोड़ने के लिए मैंने ये एक इस तरह का उपाय सोचा, हम लोग बहुत ही शर्मिंदे हैं। राजा ने बहुत उनको गुस्सा किया, लेकिन राजा महान वैष्णव थे, उन्होंने उनको माफ कर दिया, बोला तुमको माफ करते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सजा है, वो सजा ऐसी है कि अब से आप इन वैष्णवों की सेवा करते रहोगे। लेकिन राजा के मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं किसके बीच में रहता हूं, इन लोगों की मन स्थिति कैसी है, ये जो शुद्ध वैष्णव है उनके प्रति ये ऐसा आरोप लगाते हैं, मैं इन लोग के बीच रहता हूं तो हमको किसी ना किसी रूप में यहां यथाशीघ्र यहां से निकल के चला जाना चाहिए। ये जो कृष्ण भक्त रहते हैं ये बहुत ही चतुर रहते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, ये जो भौतिकवादी हैं उनको बाह्य जगत से बहुत मतलब रहता है, अगल बगल की बात घर घर की कहानी इधर उधर में ही ध्यान लगा रहता है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं रहता है कि जो कृष्ण भक्त हैं जो अंदर में बात करते हैं बाह्य जगत से इनको मतलब नहीं रहता है, ये अंदर में बात क्या करते हैं, ये अंदर से यही बात करते हैं, इनका एक ही निशाना रहता है कि मैं किस तरह से वैकुंठ लोक जाऊं और किस तरह से वहां पे अपने राम राज्य का स्थापना, अपने राज्य महल का वहां पे स्थापना करूं जो कि शाश्वत हुआ करता है, और ये भौतिक वाले यहां पे जो भी बनाते हैं वो नश्वर ही रहता है। तो राजा बोलते हैं कि हमको यहां से तुरंत यहां से छोड़ के यहां से जाना चाहिए। राजा के पिता का नाम मैंने पहले बताया था, राजा का पिता का नाम था दीर्घव्रत, इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी दीर्घव्रत रही रखा था, पुत्र भी राजपाट संभालने के लायक हो गया था और पुत्र को उन्होंने राजा का पूरा भार सौंपन किया। इनकी जो पुत्री थी वो बहुत ही अनन्य भक्ति थी, भगवान की बहुत भक्ति करती थी। इसके बाद ये श्रीरंगम के लिए रवाना हो जाते हैं, श्री रंगनाथ की सेवा में बहुत साल वहां बिताते हैं, इसी दौरान अपनी पुत्री का विवाह भी श्री रंगनाथ जी के साथ करते हैं, ये वहां पे बहुत ही अद्भुत पंक्तियों की रचना करते हैं, वो बहुत ही अद्भुत पंक्तियों की रचना करते हैं। उसी दौरान वहां पे बहुत सारे तीर्थ स्थान है, वहां का भी ये इधर उधर का यात्रा करके आते हैं और लास्ट में अंतिम समय में ये वहां पे ब्रह्म क्षेत्र में, मनहार क्षेत्र है ब्रह्म देश में, मनहार क्षेत्र में राजा गोपाल स्वामी जो कृष्ण का ही एक रूप है वहां जाके सेवा करते हैं और 67 वर्ष की आयु में ये अपने इस लोक से निकल के वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। ये था राजा कुलशेखर का जीवन, एक संक्षिप्त जीवनी जो हमको भक्ति के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे। यहां पे सबसे बड़ी राजा के अंदर में जो लालसा थी, लालसा युक्त जो प्रार्थना भगवान के प्रति थी कि हमको आपकी सेवा का किस कभी चांस मिलेगा, कभी अवसर मिलेगा, यही भक्ति का सबसे बड़ा एक मोर है, सबसे बड़ा एक स्तंभ है जो भक्ति के तरफ भक्ति की तरफ आपको आगे के लिए जाता है, भक्ति की तीव्रता को आपको बढ़ाता है। हम राजा कुलशेखर के जीवनी से ये सीख सकते हैं कि जो राजा कुलशेखर के जीवन में ये लालसा थी कि मैं भक्ति लालसा युक्त प्रार्थना थी कि मैं रघुनाथ की सेवा कैसे करूं, तो उस तरह से जितने भी भक्त अभी इस हॉल में बैठे हैं उनको आने वाले दो महीने भर डेढ़ महीने में अपने अंदर उसी तरह से लालसा युक्त प्रार्थना करना चाहिए कि मैं हमेशा किस तरह से भगवान के लिए, भगवान राधा गिरधारी के लिए, नवनिर्माण मंदिर के निर्माण के लिए किस तरह से लक्ष्मी का एकत्र करूं कि जिससे ये भव्य मंदिर जल्द से जल्द सब संपन्न हो जाए और इसका उद्घाटन तुरंत हो जाए। यही लालसा हमारे अंदर अगले महीने अगले दो महीने में रहना चाहिए कि किस तरह से हर एक भक्त 24 घंटे उसी लालसा में उसको जीना चाहिए कि मैं किस तरह से लाइफ मेंबर बनाऊं, किस तरह से मैं भगवान राधा गिरधारी की प्रसन्नता के लिए जल्द से जल्द अधिक से अधिक मात्रा में धन का इकट्ठा करूं जिससे यह जो मंदिर नवनिर्माण मंदिर का निर्माण हो रहा है वो बहुत ही भव्य तरीके से और उद्घाटन भी भव्य तरीके से हो सके। जब ये लालसा हमारे अंतर में रहती है तो बाही में भी वही दिखेगा। अभी हमारे मन में इतना संकोच रहता है, यार उससे पैसे कैसे मांग सकता हूं, उससे पैसे क्या मांगू, लेकिन जब ये जब लालसा हमारे अंदर एक गाढ़ापन रूप लेता है तो वो फट से बाह्य रूप को नहीं देखता है और उस रास्ते पे चल पड़ता है। तो हमारे आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस चीज को, इस लालसा के साथ इस यहाँ से आज यही शिक्षा लेके जाइए कि जिस तरह राजा कुलशेखर पेरुमाल के मन में ये लालसा थी कि हम भगवान का कभी दर्शन कर सकते हैं, रघुनाथ की कभी में सेवा कर सकते हैं, इस वैष्णव की कभी सेवा कर सकते हैं, वही भाव आपके अंदर आना चाहिए, वही किस तरह से हम वही लालसा युक्त प्रार्थना राधा गिरधारी की तरफ करनी चाहिए, किस तरह से जैसे हम लक्ष्मी का संयोजन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी समय और है, मैं एक आलवार के बारे में आपको और बताता हूँ। टोटल 12 आलवार हैं। राजा कुलशेखर 7वें आलवार थे, 8वें आलवार थे पेई आलवार। मैं इसका वर्णन इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे अंडाल बैठे हैं, इसलिए ये वर्णन करना अनिवार्य है। और 9वें आलवार थे अंडाल आलवार। आंडाल अलवार और पई अलवार का जन्म कृतमाला वैगई नदी के किनारे पे हुआ था। ये भी कलयुग शुरू होने के दूसरे दशक की बात है, करीब 150 साल 110 साल हो चुके थे उसके बाद की बात है। पई अलवार के पुत्री के रूप में आंडाल को जाना जाता है। जिस तरह से आपको ज्ञात है रामायण में सीता धरती से निकली थी, उसी तरह से यहाँ पे ये जो पेई आलवार थे ये श्री बेलुपत्तुर में, जहाँ पे श्री वटपत्र शाही विष्णु का विग्रह था, वहां सेवा किया करते थे। और इनका सेवा ये था कि इनको एक छोटा सा जगह था जहाँ पे तुलसी माला का ये खेती करते थे और उस तुलसी माला और फूल से निकाल के माला करते थे और श्री वटपत्र शाही को जाके अर्पण करते थे। तो एक दिन तुलसी माला के जमीन में जब ये कुछ सेवा कर रहे थे तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर पुत्री बच्चा वहां पे, क्योंकि आंडाल जो थी वो भी जैसे मैंने पहले बताया था कि सभी आलवार जो हैं भगवान के किसी किसी सामग्री और उनके दूध के अवतार हैं, उसी तरह से ये जो आंडाल थी ये भगवान की भू शक्ति के अवतार थे। भगवान की तीन शक्तियां होती हैं, एक श्री शक्ति है, भू शक्ति है और नीला शक्ति है। तो उन्होंने उसको उठाया, अच्छे से साफ किया और बहुत ही अच्छा लालन पालन किया। मैं संक्षेप में करूंगा, समय नहीं है। बहुत ही अच्छा लालन पालन किया, छूट दे दिया था उसको, पुत्री को। उसका नाम इन्होंने गोदा देवी रखा। गो का मतलब होता है इंद्रिय, गाय, और एक ये भी मतलब होता है कि जो अद्भुत स्तोत्रों की रचना करती है और उसे एक माला कृत करके भगवान को समर्पण करती है उसको भी, इसीलिए इसका नाम इन्होंने गोदा देवी रखा। समय निकलते गया, ये इनका सेवा जो दिनचर्या था वो उसी तरह था। उठते थे, तुलसी माला तोड़ा, फिर उसे माला कृत किया, फिर भगवान को उसको रखते थे, फिर जाते थे आते थे, फिर माला ले जाके बटपत्र शाही को अर्पण करते थे। पैयालवार का नाम था विष्णुचित्त। तो यहां पे गोदा देवी भी बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। तो ये क्या किया करती थी गोदा देवी कि जैसे ही पिताजी इसके माला बना के छोड़ के चले जाते थे तो ये माला को पहन के ऐनक के सामने खड़े होके खेलती रहती थी, देखती रहती कि आज मैं कौन से माला पहन के ज्यादा सुंदर लग रही हूं। एक समय की बात है, पैयालवार आए तो गोदा देवी के बाल में एक फूल लगा हुआ था। तो पैयालवार विष्णुचित्त कहते हैं कि हे गोदा, तुमने ये माला पहना क्या? बोले हाँ। तो तुमको तो इतनी समझ रहनी चाहिए कि ये तो माला मैंने बटपत्रशाही के लिए बनाया और तुमने कैसे पहन के इसको जूठा कर दिया। तुमको अभी तक मैंने कभी डांटा नहीं, जो बोला वो किया, तुमने आज उसका सिला मेरे को इस तरह से दिया कि अभी तक मैं बटपत्रशाही को जो माला अर्पण करता आया वो झूठा माला अर्पण करते आया। भगवान को जब भोग भी लगता है तो कहा जाता है निर्मालयम, कहा जाता है इसको कि जो भगवान का भोग बनाता है उसके सिवाय भगवान और उसके सिवाय उस भोग को कोई देखना भी नहीं चाहिए, इसीलिए भगवान के भोग को ढक कर लेके जाया जाता है। तो उसको बहुत डांटा और उस दिन बटपत्रशाही को वो माला अर्पण करने नहीं गए। रात को बटपत्रशाही उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि हे विष्णुचित्त, आज तुमने मेरे को माला अर्पण नहीं किया। बटपत्रशाही कहते हैं कि विष्णुचित्त, तुम तो हमेशा हमारे को सुगंधित तुलसी के मालाओं अर्पण करते आए हो, लेकिन जब यही माला गोदा देवी पहनती थी और तुम मेरे को अर्पण करते थे वो और सुगंधित हो जाया करता था। तो मैं तुमको आदेश देता हूं कि जो माला गोदा देवी पहनी थी वही माला तुम हमको अर्पण किया करो। देखिए भाव, भगवान कितने भावग्रही जनार्दन है कि भाव को कैसे समझते हैं। दूसरे दिन जब विष्णुचित्त भगवान बटपत्रशाही के मंदिर में जाते हैं तो जो माला परसों चढ़ाया गया था वो माला उसी तरह से बहुत ही, जिसको फ्रेश बोलते हैं, उस तरह से फ्रेश था। जरा सा भी उसमें कुछ भी सिकुड़ता, कुछ भी ऐसा बासी होने से जिस तरह से माला सिकुड़ जाता है ऐसा हो जाता है, उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरह से गोदा देवी बड़ी होती गई, जिस तरह से एक उसके बाद से बटपत्रशाही ये विष्णुचित्त उसी तरह से माला बनाते थे, गोदा देवी को अर्पण करते थे और फिर जाके बटपत्रशाही को अर्पण करते थे। समय बीतते गया। बहुत ही मेधावी छात्र थी, बहुत ही भगवान की भक्ति में थी। इन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे श्लोक लिखा करती थी ये, जो मार्गशीर्ष के महीने में माताजी लोग श्लोक का पाठ करती हैं, 30 श्लोक है वो भी इन्होंने, गोदा देवी ने उसकी रचना की। देखते देखते जब तरुण अवस्था में आ गई तो जैसे हरेक पिता को जब कन्या बड़ी हो जाती है तो उनके मन में चिंता रहती है कि अभी कन्या का शादी किसके साथ किया जाए। तो इनके मन में भी स्वाभाविक चिंता आई और एक दिन बिठा के गोदा देवी से पूछा, हे गोदा देवी, तुम्हारे मन में कुछ है क्या, तुम किससे शादी करना चाहती हो? तो कहती हैं कि यदि आप किसी से इस भौतिक जगत में किसी से मेरी शादी कर दी तो मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगी। बोला, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने तो पूछा कि किससे शादी कर सकती हो, तुम्हारे मन में कुछ ऐसा विचार है क्या? बोला, इस भौतिक जगत में मैं किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। विष्णुचित्त कहते हैं, इस भौतिक जगत में तुम किसी से शादी नहीं कर सकती हो तो आध्यात्मिक जगत में कैसे शादी होगी? जब सीता जी के भी साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब जनक जी ने उसे पूछा था कि किस तरह से तुम्हारी शादी होगी तो सीता जी ने भी यही कहा था कि यदि पिता आप हमको किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर दोगे जो एक चमड़ी के झोले के जैसे है तो उसी दिन मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। ये शरीर क्या है, चमड़ी है और झोले के जैसा, एक थैले के समान है, इसके अंदर गंदगी भरी हुई है। तब फिर उन्होंने देखा कि जो शिव जी ने धनुष उनको दिया था, जो शिव जी से धनुष आया था वो इतना बड़ा था, इतना भारी था कि जिस रथ पे रखा हुआ था उस रथ को खींचने के लिए करीब 50,000 बाहुबली की जरूरत पड़ती थी। बोला, यदि ये कोई राजा इस रथ को, इस धनुष को उठा के तोड़ देता है तो वो तो हमारी पुत्री के लायक है, वो फिर इस चमड़ी के झोले के जैसा नहीं है। तो ये कथा मालूम है किस तरह सभी राजा आते हैं, कोई नहीं तोड़ पाया, बाद में विश्वामित्र ने राम जी को लाया और राम जी ने उठा के तोड़ दिया, तोड़ा ही नहीं पर पंचा चढ़ाया, फिर उसकी शादी, उनका विवाह राम जी से हो गया था। उसी तरह से जब इन्होंने यहां बोला तो फिर विष्णुचित्त उनको बताते हैं कि ठीक है, तुम इस भौतिक जगत के किसी व्यक्ति से शादी नहीं करोगी तो आध्यात्मिक जगत में करोगी तो मैं तुमको 108 भगवान के बारे में बताता हूं। अब इसमें से बताओ तुम किससे शादी करना चाहती हो। आपके मन में यह आएगा भगवान तो एक है, यहाँ विष्णुचित 108 भगवान की बात कह रहे हैं, वो क्या है 108 भगवान? ये है कि दिव्य देशम 108 है, साउथ में जितने भी दिव्य देशम है जहाँ विष्णु के बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही प्रमुख मंदिर हैं, वो सब 108 दिव्य देशम है। अपने नॉर्थ में 3 है, नेपाल में 1 है, बाकी दिव्य देशम साउथ में है। तो ये उस 8 दिव्य देशम जहाँ भगवान विष्णु का ही मूर्ति स्थापित है उसके बारे में सबका चर्चा इन्होंने शुरू किया। सबका चर्चा शुरू करते 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 जब 108वें में आए तब उन्होंने श्री रंगम के श्री रघुनाथ जी का प्रशंसा शुरू किया, और शुरू करते ही गोदा देवी उठकर नाचने लगी, बोली कि मैं इसी भगवान से शादी करूं। विष्णुचित अंदर से मुस्कुराने लगे कि ठीक है, देखो क्या होता है। वहीं पर समाप्त हो जाता है। रात को जब विष्णुचित अपने शयन कक्ष में जाते हैं, रात को सोते हैं, तो श्री रंगम के श्री रघुनाथ जी साक्षात उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि हे विष्णुचित, मैं तुम्हारी पुत्री से शादी करने के लिए तैयार हूं। और यही स्वप्न वहां पे श्री रंगम में उन्होंने अपने सेनापति, वहां पे पुजारी जो था उसको दिए कि तुम सेनापति को, राजा को तुरंत बोलो कि वो पूरे साज सामान के साथ, पूरे जेवर जेवरात, मिठाई फल फूल जितने भी कपड़े रहते हैं शादी के, जितने भी चीजें रहती हैं उसको लेके श्री बिल्लपुत्र के लिए प्रस्थान करे, जहां पे कि विष्णुचित की पुत्री गोदा देवी से मैं शादी करने वाला हूं, और उसको आदर के साथ मेरे इधर लेके आया जाए। वहां के राजा थे श्री बल्लभ देव राजा, विष्णुचित के वो भी भक्त थे। सेना पुजारी जाके सेनापति को कहता है, सेनापति भी तुरंत सबको जमा करता है, पूरे राजपाट सब कुछ जमा हो जाती है, और पूरे बारात के साथ ये यहाँ पे बटपत्रशाही श्री बिल्लीपुत्र में आते हैं, और पुजारी सेनापति श्री विष्णुचित के घर में जाते हैं और खटखटा के कहते हैं कि हे विष्णुचित, श्री रंगम के श्री रंगनाथ जी ने आपकी पुत्री गोदा देवी का हाथ मांगा है, हम अपने पूरे साज सामान के साथ आए हैं, ये उनका वस्त्र है, ये उनका आभूषण है, उनका ये फल फूल मिठाई है, आप इसको ग्रहण करो और गोदा देवी को बोलो कि ये पालकी में बैठे और श्री रंगनाथ जी के श्री रंगम की तरफ प्रस्थान करें। बोले ये बात तो सही है, लेकिन हमारे इष्ट देव तो श्री बटपत्रशाही हैं, मैंने तो उनसे पूछा ही नहीं, मैं उनको बिना पूछे आपको कैसे बोल सकता हूं कि आप इनको, हम गोदा देवी को श्री रंगम के रंगनाथ जी से शादी करने के लिए तैयार है। वो भाग के जाते हैं। श्री बटपत्रशाही और श्री रंगम में कोई, श्री रंगनाथ जी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, भगवान विष्णु का ही वो। तो वहां पे जाते हैं और बटपत्रशाही से पूछते हैं कि हे प्रभु, ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया है, मैं क्या करूं? बटपत्रशाही कहते हैं कि भाग के जाओ और गोदा का शादी श्री रघुनाथ जी के साथ कर दो। इतने में ये समाचार जो है सब जगह फैल जाता है। कोई परंपरा नहीं थी कि एक जीव का भगवान के साथ शादी कैसे होता है। सभी अचंभित थे, कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाएगा, कौन सी विधि का पालन किया जाएगा, किस तरह से शादी होगी, कौन पहले मरमाला पहनाएगा, फोन क्या करेगा। सभी श्री रंगम के लिए प्रस्थान कर गए कि जाके देखे तो सही कि होगा क्या। यहां से इनकी पालकी भी निकलती है, पालकी को अच्छे तरह से ढक दिया जाता है, क्योंकि विष्णुचित चाहते थे कि जब ये भगवान की पत्नी होने वाली है तो किसी का बुरा नजर इसके ऊपर नहीं पड़े। और पालकी निकलती है, रास्ते भर श्री गोदा देवी का गुणगान किया जा रहा है कि हो संडाल की जय हो, जिसने इसने भगवान के प्रशंसा में इसने स्तोत्रों की रचना की, उस अंडाल का जय हो जिन्होंने इस तरह से किया, भगवान को अपना चढ़ाया हुआ माला अर्पण किया। इस तरह से जब श्रीरंगम में वो पालकी पहुंचती है, श्रीरंगम में पहुंचती है और मंदिर की ओर चलती है, मंदिर के सामने जब आती है तो लाखों करोड़ों असंख्य लोगों का भीड़ वहां पे इकट्ठा है। राजा बल्लभ देव खुद वहां पे प्रस्तुत थे, खुद वहां पे मौजूद थे, और पालकी सीधा गर्भगृह जो है उसके अंदर जाता है। जाते जाते अंदर जाता है, जब भगवान का अल्टार आता है, जब गर्भगृह आता है, उसके पहले वो वहां पे रुक जाता है। यदि आप लोग किसी श्रीरंगम में गए होंगे, श्री रघुनाथ जी में, तो वहां पे जो उनकी मूर्ति है बहुत ही बड़ी मूर्ति है, उनको एक गेट से, एक दरवाजे से नहीं दर्शन कर सकते हैं, एक दरवाजे से एक पोर्शन दर्शन करने का, दूसरे दरवाजे से फिर तीसरे दरवाजे से, और वहां पे वो शयन सोए हुए इस तरह के मुद्रा में है, शेष पे लेटे हुए हैं। ये वही मूर्ति है जो भगवान राम पूजा किया करते थे। राज्याभिषेक, राम के राज्याभिषेक के बाद राम ने ये मूर्ति विभीषण को दिया था कि ये मूर्ति ले जाओ और आज से तुम इसकी पूजा आराधना करना। तो हवाई मार्ग से जब वो आ रहे थे तो श्रीरंगम के जगह पे स्थान पे उनको किसी कारण बस उतरना पड़ा, और जब वहां पे वो उतरे तो श्रीरंगनाथ जी कहते हैं कि हे विभीषण, मेरे को अब यहीं पे छोड़ दो, हमको यहीं पे रहने की इच्छा है। तो आप सभी मंदिर का दिशा देखेंगे तो वो पूर्व की ओर दिशा रहता है, श्री रंगनाथ जी का मंदिर जो श्री रंगम में है वो दक्षिण की ओर है, क्योंकि जब विभीषण जी उनको वहां पे छोड़ के लंका के ओर दक्षिण की ओर गए तो श्री रंगनाथ जी दक्षिण की ओर देख रहे थे कि विभीषण कभी वहां से वापस आएगा। अभी भी कहा जाता है कि विभीषण हर एक साल वहां पे आते हैं और श्री रंगनाथ जी का वहां पे सेवा करके फिर जाते हैं। तो जैसे ही गर्भगृह के पास पालकी पहुंचा और पालकी वहां पे रुक गया, पालकी को नीचे रखा गया, श्री गोदा देवी पालकी से उतरती हैं और एक एक कदम अंदर भगवान के गर्भगृह के पास अंदर करते हुए अंदर जाती हैं। सब कोई जिसका कोई पलक भी नहीं झपका रहा है कि पलक झपकाए तो कुछ हो जाए, तो वो दृश्य हमारे अश्रु से ओझल हो जाएगा, मैं उस दृश्य को का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सब जिसका सांस जहां पे है पिन ड्रॉप साइलेंस है और उसको देख रहा है। गोदा देवी भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न होती हैं, तेजस्वी भगवान का मुखारविंद देख के, और उनके चरण के तरफ जाती हैं और कुछ देर तक कुछ क्षणों के लिए वहां पे खड़ी रहती हैं। और इसी बीच वो तपाक से उनके शयन पे चढ़ जाती हैं, जो शेष का जो शयन है उस पे चढ़ जाती हैं। जैसे ही चढ़ती हैं सब कोई देख रहे हैं कि अभी ये तो वहां पे चढ़ गई, अभी क्या होगा, और अगले क्षण में ही गोदा देवी वहां से ओझल हो जाती हैं। सब कोई देखते रह गए कि गोदा देवी गई किधर, अंडाल गई किधर, अभी तो ये शयन पे चढ़ी थी और अभी यहां से ओझल हो गई। भगवान अंडाल जो थी, गोदा देवी थी, भगवान में मिलीन हो गई। ये जो मिलन का सवाल था ये कोई मायावादी के हिसाब से नहीं था, ये भगवान के श्री शक्ति श्री शरीर के रूप से वैकुंठ के लिए रवाना हो गई थी। विष्णुचित भी कुछ समय तक देखते रहे कि अरे क्या हो गया। विष्णुचित भी भक्त था, उनकी पुत्री भी भक्ति थी, तो उनको इतना तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन अगले क्षण उन्होंने रियलाइज किया कि हमारी अंडाल गई कहां, ओझल हो गई, विलाप करने लगे, जोर जोर से विलाप करने लगे कि हे अंडाल तुम किधर चली गई। इतने में पूरे आसमान में बादल छा गया, पूरा मेघ गरजने लग गया और एक बहुत जोर से आकाशवाणी आई कि हे पुजारी, विष्णुचित को मेरे सामने लेके आया जाए। पुजारी विष्णुचित को अंडाल रंगनाथ जी के सामने ले जाता है और रंगनाथ जी कहते हैं कि हे विष्णुचित, आज से आप हमारे ससुर हो, फादर इन लॉ। जिस तरह से समुद्र मंथन में क्षीर सागर श्वेत द्वीप का मंथन हुआ था और वहां पे श्री निकलकर वो एक उपहार के रूप में विष्णु को दिया गया था जो उनके बक्षस्थल पे विराजमान थी, उसी तरह से आपने इस अंडाल को मेरे पे दिया है और वो हमारी पत्नी है, वो हमारे धाम में है, तो आप एक क्षण के लिए भी विलाप मत करो, आप श्री बलिपुत्र जाओ और श्री बलिपुत्र में जाके श्री बटपत्र शाही का जिस तरह से सेवा करते हो उस तरह से सेवा करो, और समय आने पे जब ये शरीर छूट जाएगा तो आप भी वैकुंठ में आओगे और वहां पे आपका अंडाल के साथ दर्शन। इस तरह से देखिए अंडाल 12 आलवार में एक केवल यही कन्या थी जो कि ये कन्या आलवार थी। जिस समय इनका विवाह हुआ था उस समय केवल 15 साल की आयु की थी। तो भक्ति के लिए कोई आयु नहीं देखा जाता है कि 5 साल है या 10 साल है, केवल भक्ति में तीव्रता रहनी चाहिए, भाव रहना चाहिए। यहां हमारे सामने बहुत सारे अंडाल बैठे हैं, इनमें भी वही तीव्रता आनी चाहिए। पुरुष कन्या जाति देश प्रदेश भक्ति ये नहीं देखता है, वेद में देखता है। वेद में जो ब्राह्मण क्रिया करा सकता है वो ब्राह्मणी नहीं करा सकती है, लेकिन सामने में जो यजमान बैठा है उसमें पति पत्नी दोनों बैठते हैं, पुरुष कन्या पुरुष और महिलाएं दोनों बैठते हैं, उसमें कोई भेद नहीं रहता है। तो 2:30 बजने के लिए आया है तो हम लोगों ने आज इस महान द्रविड़ देश के वैष्णवों के बारे में चर्चा की। बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं ये 12 आलवार हैं। कभी और समय मिलेगा तो और चर्चा करेंगे इनके बारे में। ये अंडाल हैं, कुलशेखर आलवार हैं। कुलशेखर का दो पुस्तक जो किताब बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आप लोग सभी जानते होंगे मुकुंदमाला स्त्रोत्र और एक थिरुमयी पेरुमार, सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही उच्च कोटि के पुस्तक हैं, तो अपने को आज इससे प्रेरणा यही लेके जानी चाहिए कि हमारे अंदर जिस तरह से आंडाल के मल में एक भक्ति की दीर्घता थी, जिससे उन्होंने रंगनाथ जी को अपना पति माना, वही दीर्घता अपने अंदर आनी चाहिए, वो भक्ति की दीर्घता अपने अंदर आनी चाहिए और लालसा युक्त प्रार्थना करना चाहिए कि जिस तरह से जो मैंने बताया कि हमारा मंदिर एक निर्माणाधीन है, कुछ लक्ष्मी की आवश्यकता है, तो हमारे अंदर ये लालसा रहनी चाहिए कि उस लक्ष्मी को मैं किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं जिससे कि ये जल्द से जल्द और बहुत ही भव्य रूप से हो सके। हरे कृष्ण। हमारे से कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। हरे
हरे कृष्णा। भक्तों से निवेदन है कुछ धैर्य रख के बैठिए। हरि बोल माताएं, जिनके थोड़ा धैर्य रखिए 5 मिनट के लिए। पहले तो हम श्री गजेंद्र नंदन प्रभु का आभार व्यक्त करेंगे, उन्होंने बहुत ही सुंदर पलवानों की कथा आज हमें श्रवण कराई। आपको मालूम होगा पिछले रविवार को हमने अलवारों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था। अलालनाथ जो अलारनाथ अभी अनवसर में चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ चले जाते हैं दर्शन के लिए, तो वो जो अलारनाथ है वो वास्तव में अलवारों के नाथ हैं। अलवार बार अलवार हुए, अलवार का अर्थ होता है जो भक्ति में पूर्णतः डूबे हुए हैं, भगवत साक्षात्कार किए जो भक्त हैं उनको अलवार कहते हैं दक्षिण भारत में, और ये प्राय लगभग श्री संप्रदाय से हुए हैं। तो ऐसे अलवारों की कथा प्रभु जी भी कोई अलवारों से काम नहीं है, तो उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
आज बहुत ही पवित्र तिथि भगवान विष्णु